Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंथ में आज के अंत में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें लेकर के हाजिर हैं और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद निखिल जी।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है लालिमा।
Thank you, Nikhil. Yes, the headlines, friends. Domestic equity benchmark indices gain nearly 1%. Sensex closes at 75,075. Nifty at 22,821. Brent and WTI crude gain 0.5% and counting in global crude market. And gold and silver futures log gain in global commodity exchange.
घरेलू शेयर बाजार में करीब 1% की बढ़त, सेंसेक्स 75,075 अंक 1821 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल और WTI क्रूड में 0.5% की बढ़त, वैश्विक तेल बाजार में भी वृद्धि और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना और चांदी ऊपर चढ़े। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज करीब 1% के लाभ के साथ बंद हुए। चीनी शेयरों की तुलना में उच्च मूल्य निर्धारण की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत में खरीद जारी रखी, इसके बावजूद भारतीय बाजार में तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 692 अंक यानी कि 0.93% की बढ़त के साथ 75,075 अंक पर जाकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 201 अंक यानी 0.89% ऊपर चढ़कर 22,821 पर पहुंच गया। इस बीच मंगलवार की गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी की रिकवरी का श्रेय चुनाव के बाद के समीकरणों को दिया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। और बीएसई के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 2.8% की बढ़त देखी गई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 3.06% का लाभ दर्ज हुआ।
India's equity benchmark indices closed nearly 1% higher today, despite the foreign institutional investors continue to sell in India due to high valuation compared to Chinese stocks. The Sensex gained 692 points or 0.93% to close at 75,075. Nifty advanced 201 points or 0.89% to settle at 22,821. The recovery of the Sensex and Nifty after Tuesday's crash is attributed to the post-election results, wherein NDA is preparing to form the government for the third consecutive time. In NSE Nifty, 83 companies hit 52-week high and 22 hit 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index up by 2.28%, while the small-cap index rose 3.06%. 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were Tech Mahindra and HCL 4%, SBI 3.46% and Infosys 2.95%. On the other hand, the three major laggards were Hindustan Unilever 2%, Asian Paints 1.88% and Mahindra & Mahindra 1.57%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged gains. The top three gainers were Realty 4.85%, Industrials 3.7% and Capital Goods 3.4%. The overall market breadth was positive. Out of 3,945 companies, shares of 3,009 companies advanced and 834 declined and 102 remained unchanged. So Deepshika, we see that the markets have rebound thanks to signs of political stability, the same government being re-elected now for the third time, so policies remain there. And of course, I think that our macroeconomic fundamentals have been strong, ironically, by the same government in the last 10 years, and that has also led to a good rebound. Not too bad after 75,000.
Absolutely, Lalima. You know, I think the signals that are coming out in terms of the political signals that the markets is getting, that there would be a government formation that would be probably a stable government formation, which will continue with the policies that were, the policy would continue, mm-hmm. you know. Mm-hmm. So I think that policy stability assurance which the markets are seeing, that is sort of seeping in, and I think that's giving some amount of confidence. So markets are gaining semblance, and which is what is seen in the you know, the rise that we are seeing.
दीपशिखा, सेंसेक्स एक बार फिर 75,000 के पार हो गया है. हालांकि जब गिरावट आई मंगलवार से पहले, तो उसमें ये माना जा रहा था कि बहुत ही जल्दी कवर नहीं कर पाएगा इस आंकड़े को, लेकिन फिर से हम 75,000 के पार हो गए हैं.
देखिए निखिल जी, जैसा कि लालिमा जी भी कह रही थी कि जो हमारे इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो तो बहुत बढ़िया हैं. हमने देखा कि पिछले वर्ष की भी जो जीडीपी विकास दर की गति आई थी, इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो भी अच्छे कर रहे हैं. अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेड है, तो कृषि क्षेत्र अच्छा करेगा. तो मैक्रो फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं. जो हमने गिरावट देखी थी वो पोल्स और उससे जुड़ी हुई अनसर्टेनिटी जो होती है उसकी वजह से आई थी. अब वो अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ी छटती हुई लग रही है. बाजार को लग रहा है कि यही सरकार अब कंटिन्यू करेगी, और जो नीतियां इनकी थी, नीतियों में ऐसा कोई उथल पुथल नहीं होगा जो बाजार के लिए, निवेशकों के लिए हार्मफुल हो सकता है. तो वो एश्योरेंस जो एक बाजार को लग रहा है थोड़ा मिलता हुआ, तो धीमे धीमे थोड़ा, मतलब एश्योर होके, इस तरह की हम देख रहे हैं कि काफी उसने रिकवर कर लिया.
इसमें एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा दौर भी देखा गया जब सरकारी कंपनियों पर जो लोग पैसा लगाते थे उनको ये लगता था कि इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता अगर एक बार ये डाउन होंगे, लेकिन सबसे जोरदार तरीके से अभी जो गिरावट है उसमें वापसी की है. लगभग 14% तक उछाल दर्ज किया गया सरकारी कंपनियों में. ये किस तरह का रुख दर्शाता है?
बिल्कुल, जो कॉन्फिडेंस अगर हमने देखा पिछले कुछ समय से, पीएसयू स्टॉक्स जो हैं बाजार के बहुत फेवरेट बने हुए थे. थोड़ा झटका आया क्योंकि अनसर्टेनिटी आई जब रिजल्ट्स नतीजे आए चुनाव के, लेकिन अब बाजार में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है. तो और यही सरकार चूंकि लग रहा है कि कंटिन्यू करेगी और एक स्थिर सरकार रहेगी, हालांकि कोएलिशन है और माइनॉरिटी कोएलिशन है, लेकिन नीतिगत ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा. तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही थी, उन क्षेत्रों में जो पुश था वो जारी रहेगा. तो वही वजह है कि मार्केट्स जो है इनमें अपना कॉन्फिडेंस जता रहा है.
द स्टॉक मार्केट्स क्रैश्ड फॉर अ डे दीपशिखा, एंड मेनी वेंट एंड बॉट एंड इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट्स. कैन वी से दिस वॉज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन दिस गाइज? I mean, I'm just playing it up.
Lalima, you know, when we saw this fall, it was a very risky bet which people would have taken. Definitely, because there were several levels. So while the market has recovered, it is always risky if you're, you know, buying in such a volatile market. Because volatility was huge that day.
Yes.
But definitely if you bought at very good levels and directionally if the markets are going to go up, you would stand to gain hugely.
दीपशिखा, आपने कई बातें बताई. एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूं. इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, आपने पीएसयू का जिक्र किया. मिड कैप और स्मॉल कैप के जो फंड्स रहे हैं वो अभी तक बहुत बड़े गेनर्स रहे हैं. अगर ये जो भी बीच का इस हफ्ते की बात अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा भी लगातार बहुत ज्यादा गेन किया है, तो आगे आपको क्या लगता है? चूंकि नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने वाला है, तो आगे भी ये स्थिति हम देख सकते हैं?
निखिल जी, जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि सरकार में ऐसा कोई बदलाव जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि यही सरकार वापस आ रही है
जी।
और चूंकि ये एक माइनॉरिटी कोएलिशन है, मेजॉरिटी कोएलिशन नहीं है, दो और पार्टीज, बड़ी पार्टीज उसको सपोर्ट कर रही हैं, इस कोएलिशन का हिस्सा है, तो नीतियों में ऐसा कोई भारी बदलाव, ऐसी कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही है कि मिलेगा कि एकदम से बहुत कुछ बदल जाएगा। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है, अगर आपको ग्रोथ को आगे बढ़ाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पुश करना ही पड़ेगा। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को पुश के बगैर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये नीति जो है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई राजनीतिक धड़ा होगा जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये क्षेत्र आगे भी इसके लिए पुश जो है वो जारी रहेगा और उसका फायदा जो है इससे जुड़े क्षेत्रों को मिलता रहेगा।
यानी बैंकिंग, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव में ही रहेंगे?
एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर्स तो काफी अच्छा कर रहे थे और अब ये मॉनसून की जैसे खबर आई है कि मॉनसून जो है अच्छा रहेगा, कृषि क्षेत्र अच्छा करेगा, तो उसका हम यूजुअली देखते हैं कि जब मॉनसून अच्छा होता है, कृषि क्षेत्र का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो एफएमसीजी को उसका बहुत फायदा होता है। तो रिटेल कंजम्पशन जो है उसको रूरल जो है ग्रामीण क्षेत्र से जो बूस्ट मिलता है, ऐसी आशा है कि वो मिलेगा। तो डेफिनेटली ये सेक्टर्स जो हैं ये बेहतर परफॉर्मेंस देंगे।
सिंस वी आर अ ह्यूज पॉपुलेशन, अगेन आई थिंक आई एम इन अ मूड टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, वी आर अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड सो वी हैव बिकम अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, डज दैट ऑल्सो गिव अस एन एज दैट कम व्हाट मे थिंग्स मे गो अप, रिजल्ट्स मे गो हियर और देयर, बट वी आर ऑन साउंड फुटिंग नाउ बिकॉज आवर कंजम्पशन विल रिमेन स्टेडी।
Lalima, you know, I'd like to mention here, we are on a sound footing as an economy. Yes, we are a huge nation, we are a huge market, but also I think the economic management has been very good. So if you look at the macroeconomic indicators, they're fairly sound.
Mm-hmm.
So while we did see, foreign investors pulling out last month, largely because there were reallocations to other markets and so on, they would definitely be coming back and investing in a big way because India's story remains intact. Despite the political whatever developments that we've seen, and there is a stable government which is going to be, hopefully a stable government which is going to be in place,
mm-hmm.
even though it's a minority coalition, policy continuity would be there. So the India story, I don't think, is changing in that way. It may change for the better, I would say.
Mm-hmm. And where do you see today we see that the top three gainers were realty 4.85%, industrials 3.7%, and capital goods 3.4%. Is that going to be like that in the near future, you think? Upward swing in these three sectors?
See,
what's your assessment?
Sectors that are connected to infrastructure, like I said earlier, those sectors, those companies in those sectors will definitely benefit. Because infrastructure push, no matter what, has to be there.
Mm-hmm.
Because you are looking at, there is an infrastructure deficit which has to be filled. So definitely those sectors which support it will stand to gain. The other part of the story is the consumption story. So if the consumption story sort of gains strength, gains momentum because of the monsoon, because of, high productivity, better productivity in farm sector, that will gather momentum. So you have FMCG, you have auto, typically the sectors that see benefit out of it. So I think the India story per se going forward, I don't think it's losing sheen.
So,
I am as optimistic as you, Lalima.
Yeah, we're all on an optimistic note and mood, I think. When we talk of NPAs, you talked about the policy being consistent now that the government will be coming, because we're talking about the government because that's the mood of the nation at the moment, and that's the whole talk, that's the fulcrum of the talk at the moment. The fact that we've come a long way, GST, NPAs now were taken care of. So you think that all this will also add to a stabilization of the economy, continue to stay stable, and a little ruffling here and there will not make so much of a difference?
Absolutely. I think you are absolutely right here. इन टर्म्स ऑफ जीएसटी वी एक्सपेक्ट द न्यू गवर्नमेंट वुड प्रॉब्ली लुक एट यू नो रैशनलाइजिंग जीएसटी एड्रेसिंग लॉट ऑफ कंसर्न्स दैट बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री हैव हैड फॉर द पास्ट टू ईयर्स एंड जीएसटी वॉज रोल्ड आउट ईयर्स बैक सो नाउ इट यू नो नीड्स अ रिव्यू सो probably there could be some improvement. There are two different large section of different parties which are going to be part of this coalition. Mm-hmm. So probably, you know, it may become easier to reform the GST.
Mm-hmm.
The other part, of course, you mentioned the banking story. Banking story is a remarkable story which is right there before us in mm-hmm. terms of NPAs.
Yes.
So the banks are already, I mean, they are in a very healthy situation to fund the growth that India probably expects in times to come. Especially because, you know, we are expecting the private investment to take a turn. After all the CAPEX push, it's begun to, you know, there are some green shoots which people are seeing. So banks are in a position to fund that. So I think that story remains pretty interesting.
Mm-hmm.
Banking का जिक्र चल रहा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तीन दिन की बैठक मुंबई में चल रही है तो अब चूंकि नई गवर्नमेंट बनने वाली है और वित्त वर्ष तो चल ही रहा था लेकिन अब एक नया बजट भी आएगा तो इन सारी चीजों अगर हम देखें तो आरबीआई अपना किस तरह का स्टैंडर्ड रख सकता है कि क्या सोच रख सकता है आगे के लिए क्योंकि चुनौतियां थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं महसूस तो होंगी ही.
बिल्कुल आपने एकदम सही कहा निखिल जी. इस समय मुझे नहीं लगता है कि रिजर्व बैंक जो है कोई बदलाव करेगा. स्टेटस को रखने की ऐसी उम्मीद की जा रही है
जी.
क्योंकि अभी जैसा आप भी कह रहे थे कि बजट आने वाला है तो चूंकि ये एक माइनॉरिटी कोएलिशन गवर्नमेंट है और जैसा सरकार शायद उम्मीद कर रही थी उस तरह के नतीजे चुनाव में नहीं आए
जी.
तो वो भी अंदरूनी जो भी उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा क्योंकि विपक्ष की पार्टीज जो थी उन्होंने बहुत कैश ट्रांसफर्स और इस तरह के पोल प्रॉमिसेस किए थे तो हो सकता है कि कुछ सरकार भी कुछ करेक्शन हो कुछ इस तरह का प्रोग्राम लाने की कोशिश हो जिसमें कि खर्चा बढ़ सकता है
जी.
तो जब खर्चा बढ़ सकता है तो आरबीआई भी उसी हिसाब से थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखेगा. तो इसीलिए इस समय और चूंकि मॉनसून पे अभी क्लैरिटी नहीं है और कुछ जैसे वेजिटेबल्स में फूड इन्फ्लेशन जो है अभी भी थोड़ा सा कंसर्न है. हमने देखा आलू के दाम सडनली बढ़ गए तो इसलिए आरबीआई भी थोड़ा फूक फूक के कदम उठाएगा इस दिशा में.
अभी थोड़ा सा आंकड़ों की हम बात करें तो एनएससी के एक खबर आई कि 19.71 अरब डॉलर ट्रांजैक्शन हुए हैं एनएससी में. तो ये एक सिंगल डे में इतने बड़े अमाउंट में मतलब इतनी बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन होगा ये किस स्थिति को दर्शाता है? भारतीय जो अर्थव्यवस्था में जो शेयर बाजार की एक जगह है उसको मजबूती में दर्शाता है या कुछ और इसको हम समझ सकते हैं?
बिल्कुल देखिए इस लेवल पर तो हम आ गए हैं कि अगर एक कुछ साल पहले अगर इस तरह का उथल पुथल बाजार में होता था तो वो काफी दिन तक वो स्थिति रहती थी और काफी शॉक रहता था. देखिए बाजार ने ये शॉक भी जो लगा इसको भी एब्जॉर्ब किया रिकवर किया और अब आगे मोमेंटम पकड़ लिया है. तो ये शेयर बाजार ने जो मेच्योरिटी गेन की है ये ट्रांजैक्शंस जो है और ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में रिटेल क्षेत्र जो है रिटेल इन्वेस्टर्स जो है काफी हद तक जुड़े हैं बाजार से तो उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है.
And just to add to what you're saying, Ms. Nirmala Sitharaman had said that growth will always be on the top of the charts vis-a-vis reducing fiscal deficit. What is your assessment? What do you see that the outlook of the new government would be? Growth would be in mind, economic growth, which way would they go? Any guesses?
No, definitely. I think with the results that we've seen, I think the focus of the new government would be how to prop growth and how to prop job-led growth.
Mm-hmm.
Job creation remains a huge concern.
Yes.
And we've seen in the run-up to the election, इन टर्म्स ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज दैट पीपल वर हाईलाइटिंग वर जॉब्स बिकॉज देर आर यंगस्टर्स कमिंग आउट ऑफ यू नो कॉलेजेस एंड वी बीन हियरिंग स्टोरीज अबाउट यू नो आईआईटी इज नॉट गेटिंग 100% प्लेसमेंट सो डेफिनेटली एंड स्पेशली विथ यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉर्ट ऑफ मेकिंग इनरोड्स इन वेरियस सेक्टर्स सो जॉब लेड ग्रोथ आई थिंक वुड रिमेन अ प्रायोरिटी In terms of fiscal deficit, we've seen a 10-year record of this government and they've managed to sort of remain fiscally very prudent. They've not gone for splurges, large splurges. It's been very balanced. So I think overall the expectations are that, you know, they will refrain from splurge. They will not let the macroeconomic story sort of, you know, go out of hand. So that balanced approach would probably continue going forward.
दीपशिखा एक खबर है सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में 10 लाख रुपए तक रखने का प्रस्ताव रखा है भारतीय शेयर बाजार को मजबूती देने के लिए नो डाउट ये एक अच्छा कदम है लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरह की पहल है ये
डेफिनेटली निखिल जी जैसा कि मैं कह रही थी कि बाजार जो है अगर हम देख रहे हैं वो मैच्योर हो रहा है कुछ साल पहले से अभी तक एक अलग किस्म की मैच्योरिटी आई है
जी.
तो अगर विदेशी निवेशक पहले होता था अगर वो पैसा निकालते हैं बाजार से निकलते हैं तो बाजार बहुत बुरी तरह से टूटता था
जी,
अब जो है बाजार खड़ा रहता
तो
है
इसी को काउंटर करने के लिए
तो ये जितना ज्यादा आपका मार्केट जो है डीपन होगा और डेप्थ आएगी उसमें उसका विस्तार होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबलाइज रहेगा
right.
ये इन एक्सटर्नल फैक्टर्स से सो ये उसी दिशा में एक कदम है
right,
और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं विदेशी पूंजी के बाहर निकलने और कई देशों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण आज विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया 5 पैसे के नुकसान के साथ 83.49 रूपये के स्तर पर बंद हुआ अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया 83.40 रूपये पर खुला और 83.49 रूपये पर बंद होने से पहले सत्र के दौरान ग्रीन बैक के मुकाबले अंतर दिवसीय कारोबार के निचले स्तर 83.50 रूपये तक पहुंच गया विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में बढ़त के साथ 104.30 पर कारोबार कर रहा था और एशियाई बाजारों की हम बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख देखा गया दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.03% का उछाल दर्ज हुआ जापान के निक्केई सूचकांक में 0.55% की तेजी देखी गई हांगकांग का हेंगसिंग सूचकांक 0.28% ऊपर आ गया सिंगापुर का स्टेट्स टाइम मामूली रूप से 0.02% की बढ़त के साथ और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.54% ऊपर चढ़कर बंद हुआ यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार में आज सकारात्मक रुख रहा समाचार लिखे जाने तक जर्मनी का इंडेक्स 0.73% के लाभ में था फ्रांस का कैक 0.47% की बढ़त के साथ और लंदन का फुटसी 100 0.34% ऊपर आकर कारोबार कर रहा था दीपशिखा जी आज चारों तरफ हरियाली हमें नजर आ रही है मार्केट में तो इस पर आपके क्या विचार हैं
बिल्कुल हरियाली हरियाली है क्योंकि अमरीकी बाजार जो है वहां पर ये और यूरोपीय बाजार में ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेशन हो गई है कि अब रेट कट जो है वो हो जाएगा ब्याज दर जो है वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसको घटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे
जी
यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो ऐसे इंडिकेशंस भी दे दिए हैं तो वो जो है एक फीलिंग जो है वो बनी हुई है और दूसरा विदेशी निवेशकों ने थोड़ा री एलोकेशन किया है तो थोड़ा पैसा जो है वो चीनी बाजार में भी गया है उस तरह से जो री एलोकेशन हुआ है दूसरा चीनी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा सुधार की उम्मीद की जा रही है इस साल तो उसका असर भी एशियाई बाजारों में थोड़ा दिखाई दे रहा है तो वही है चारों तरफ हरियाली है
एंड सो वी आर पॉइज्ड वी होप दैट आर यू नो द फैक्ट दैट वी वर एम्बिशियस टू मूव फ्रॉम नंबर फिफ्थ इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रादर टू बी पॉलिटिकली करेक्ट कोट एंड कोट टू द थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वुडन्ट बी फार अवे लेट्स होप
Definitely. I think if you look at the GDP numbers for the last financial year, I think we are on course, definitely. And if you look at the indicators, if we get a good monsoon, the agri sector would also join the growth story. Plus, we've seen, you know, private investment sort of coming in slowly, mm-hmm. of course. And with the continued capex push, definitely we'll be on course.
A look at the US markets now. Economic data aided the market to expect for the much awaited policy easing cycle by the Fed. The market's acceptance of the data led Nasdaq and S&P to hit record closing highs yesterday. The Nasdaq gained around 2%, Dow Jones Industrial Average added 0.25%, and the S&P 500 rose 1.2%. How do you see the U.S. markets going? Which way?
You know, I think as, you know, this assumption about a rate cut, more definitiveness around that, I think the U.S. markets would move northwards. And that is what we're saying, because the job data came out 2 days back, which was not that positive. It has strengthened this belief that the Fed would go in for a rate cut. So probably, and with the ECB also sort of giving those indications, I think directionally markets are sort of concluding that probably it is happening sooner than later.
दीपशिखा, अगर वैश्विक स्तर पर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो सारी चीजें चल रही हैं वैश्विक बाजार में, तो उनसे लगता है कि अगले दो महीने जून और जुलाई का जो मतलब महीना, ये इसको मिला करके हमारे साथ जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से।
बिल्कुल, क्योंकि ये बदलाव जो महसूस किया जा रहा है, हमारे यहाँ तो चुनाव आ गए थे और अब हमारे यहाँ जुलाई में बजट होगा जो बाजार के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, सिर्फ और उसको विदेशी निवेशक भी उस पर बहुत ध्यान से नजर रखेंगे, क्योंकि उससे बहुत इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। यूएस बाजार में भी ये उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक शायद फेड जो है रेट कट करेगा
जी।
तो ये एक बड़े इवेंट्स होंगे निवेशकों के लिए ध्यान रखने के लिए, और ये ट्रिगर्स होंगे कि वो कहां अपना निवेश करेंगे, जिनका और खासतौर से यूएस का जो डायरेक्शन होगा वो बहुत सारे बाजारों के लिए बहुत जरूरी होगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा कि निवेशक जो है विदेशी निवेशक वो किस दिशा में जाते हैं इसके
बिल्कुल।
Alright, look at the oil prices now. Brent and WTI crude trading higher in the global crude market today. Brent crude increased by 0.71% to $78.97 per barrel. US West Texas Intermediate WTI also increased by 0.85% to $74.70 per barrel when reports last came in. And a look at gold and silver prices, Nikhil.
जी हाँ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, और इस कीमती धातु का वायदा मूल्य 5 अगस्त 2024 के लिए 0.40% की तेजी के साथ 72,809 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया। वहीं जुलाई 2024 के अनुबंध के लिए चांदी अंतिम समाचार मिलने तक 1.06% के उछाल के साथ 91,400 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। दीपशिखा जी, आपके क्या विचार हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर के, किस दिशा में जा रहे हैं, कौन पहले 1,00,000 तक पहुंचेगा?
देखिए, दोनों ही अब तो बिल्कुल उन्होंने नॉर्थवर्ड्स जो है दिशा पकड़ ली है
जी।
तो हालांकि कहा जा रहा है कि डिमांड जो है कम होगी शायद गोल्ड की, जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन प्राइसेस जो हैं उन पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लगाम लगेगी, वो धीमे धीमे डायरेक्शनली ऊपर ही की तरफ ऐसा लग रहा है, अंदाजा लग रहा है कि ऊपर जाएंगे।
और ऑयल मार्केट के लिए आप क्या कहेंगे?
ऑयल मार्केट देखिए, ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा है कि वो अपना आउटपुट जो है, जो उनका एग्रीमेंट हुआ था जिसमें आउटपुट कट्स पे बात चल रही थी, उसको शायद वो बदलेंगे, उसको रिव्यू करेंगे साल के अंत तक। तो अगर जियोपॉलिटिकल कुछ ऐसा फैक्टर डेवलप नहीं होता है तो ऐसी आशा की जा रही है कि ऑयल जो है थोड़ा स्टेबल रहेगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अगर कहीं कुछ हो जाता है, हम देख रहे हैं कि दो जोन्स हैं हमारे जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ भी अगर सीरियस होता है तो फिर परेशानी हो जाएगी।
देव शिखा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद निखिल जी.
एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस गेन नियरली 1%. सेंसेक्स क्लोजेस एट 75,075. निफ्टी एट 22,821. ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई क्रूड गेन 0.5%. एंड काउंटिंग इन ग्लोबल क्रूड मार्केट एंड गोल्ड एंड सिल्वर futures log gain in global commodity exchange. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, with my co-anchor Nikhil Kumar, signing off. Namaskar.
Namaskar.
Market Mantra.